एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण और दिल को छू लेने वाली किताब पर बात करने वाले हैं। नाम है एच इज फॉर हॉक।
नमस्कार। हाँ बिल्कुल, ये ब्रिटिश लेखिका हैं हेलेन मैकडोनल्ड, उनकी कहानी है और ये सिर्फ एक मतलब ऑटोबायोग्राफी नहीं है।
अच्छा।
हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें आपको प्रकृति लेखन मिलेगा, साहित्यिक जीवनी है और सबसे बढ़कर शोक से, गहरे दुख से उभरने की एक बहुत ही सच्ची, कह सकते हैं कच्ची कहानी है।
सोचिए, एक कैम्ब्रिज की पढ़ी लिखी अकादमिक महिला है और पिता की अचानक मौत हो जाती है,
हाँ
और उस सदमे से उभरने के लिए वो क्या करती हैं? वो एक गौशौक बाज, जो कि मतलब सबसे खूंखार शिकारी पक्षियों में गिना जाता है,
बिल्कुल, और सबसे मुश्किल भी, जिसे साधना लगभग नामुमकिन माना जाता है।
उसे पालने का, उसे ट्रेन करने का फैसला करती हैं। ये तो अपने आप में ही बहुत चौंकाने वाली बात है।
बहुत ज्यादा। और जैसा आपने कहा, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। हेलेन अपनी कहानी के साथ साथ एक और लेखक हैं, टीएच व्हाइट।
हाँ, जिन्होंने द वंस एंड फ्यूचर किंग लिखी थी।
वही उनके जीवन को भी साथ साथ देखती हैं। व्हाइट ने भी बहुत पहले 1930s में एक गौशौक को साधने की कोशिश की थी।
अच्छा, उन्होंने भी।
हाँ, पर उनका अनुभव बहुत ही बुरा रहा, वो असफल रहे थे। और हेलेन को व्हाइट की उस कोशिश में, उस दर्द में कहीं ना कहीं अपना अक्स दिखता है।
तो मतलब एक तरह का पैरेलल चल रहा है कहानी में।
बिल्कुल, और इसी वजह से इसकी जो ईमानदारी है, इसकी भाषा जो है बहुत काव्यात्मक है। इसी सब के लिए इसे 2014 में सैमुअल जॉनसन प्राइज मिला, कोस्टा बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। बड़े सम्मान हैं ये।
तो ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी लगती है, शायद आज के समय में और भी ज्यादा। यह हमें दिखाती है कि जब हम बहुत गहरे दुख में होते हैं, बिखरे हुए होते हैं,
हाँ
तो कई बार बहुत अनजाने, अजीब से लगने वाले रास्ते भी हमें वापस जिंदगी की तरफ ला सकते हैं, है ना?
सही कहा। ये मेंटल हेल्थ पर प्रकृति के साथ हमारा जो एक जटिल रिश्ता है और हमारी अपनी भावनाओं की जो परतें हैं, उनको समझने का एक बहुत पावरफुल जरिया है।
तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हेलेन मैकडोनल्ड की ये जो यात्रा है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उनके बचपन ने, शुरुआती जिंदगी ने उन्हें कैसे शेप किया होगा?
उनका बचपन, जैसा मैंने कहा, प्रकृति के बहुत करीब बीता। उनके पिता थे एलिस्टेयर मैकडोनल्ड, वो जाने माने फोटो जर्नलिस्ट थे।
ओह, अच्छा।
तो शायद वो जो नजरिया है प्रकृति को बारीकी से देखने का, उससे लगाव रखने का, वो उन्हें अपने पिता से ही मिला। और हेलेन बचपन से ही थोड़ी थोड़ी अलग थीं। मतलब बच्चों की भीड़ में खेलने से ज्यादा उन्हें खेतों में घूमना, जंगलों में जाना, वहां के जानवरों, पक्षियों को देखना पसंद था। थोड़ी शांत, किताबों में खोए रहने वाली बच्ची।
और ये बाजों के लिए जुनून, खासकर गौशौक के लिए, ये कैसे शुरू हुआ?
ये बहुत छोटी उम्र से ही था। शिकारी पक्षियों के लिए उनका जो लगाव था, वो सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, वो एक जुनून था। वो बाज पालन पर पुरानी, मुश्किल से मिलने वाली किताबें ढूंढ ढूंढ कर पढ़ती थीं
बचपन में।
हाँ, बचपन में। और सपने देखती थीं कि वो खुद बाजों को प्रशिक्षित करेंगी। और गौशाक, जो सबसे ज्यादा जंगली, सबसे अप्रत्याशित और सबसे मुश्किल बाज माना जाता है,
हाँ।
वो ही उन्हें सबसे ज्यादा खींचता था। शायद उसका वो जो अनियंत्रित, बेलगाम जंगलीपन था, उसी में उन्हें कुछ खास दिखा।
तो एक तरफ तो ये जंगली सा जुनून पल रहा है और दूसरी तरफ वो कैम्ब्रिज जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं।
अंग्रेजी पढ़ा, फिर हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ साइंस, ये दो दुनियाएं कैसे साथ चली?
हाँ, ये कमाल का कंट्रास्ट है। और ये उनकी पहचान का हिस्सा भी रहा। एक तरफ तो वो अकादमिक दुनिया थी, लाइब्रेरी, रिसर्च पेपर्स, लिखना पढ़ना, बहुत बौद्धिक।
बिल्कुल, और दूसरी तरफ बाज पालन की दुनिया, बिल्कुल कच्ची, शारीरिक मेहनत वाली, प्रकृति के भरोसे, जहां सब कुछ अनिश्चित है। वो एक कवयित्री बनी, लेखिका बनी, रिसर्चर बनी, लेकिन उनके अंदर वो जो बाज पालक था, वो कभी खत्म नहीं हुआ। ये दोनों पहलू उनके लेखन में भी साफ दिखते हैं।
तो मतलब वो हमेशा इन दो दुनियाओं के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर वो वक्त आया जिसने सारा बैलेंस, सब कुछ उथल पुथल कर दिया।
उनके पिता की अचानक मौत हार्ट अटैक से। ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, ये ऐसा था जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो अपने पिता को अपना को पायलट कहती हैं।
ओह।
उनके जाने से जो खालीपन आया, वो उन्हें बहुत गहरे डिप्रेशन में ले गया। ऐसा लगने लगा जैसे वो अपना मानसिक संतुलन खो रही हैं। दुनिया एकदम फीकी, बेमतलब हो गई।
और इसी निराशा की हालत में उन्होंने वो फैसला लिया गौशौक पालने का।
हाँ, ये जैसे सारे तर्क, सारी समझदारी को ताक पर रख देने वाला फैसला था। दुख से निपटने के जो आम तरीके होते हैं उन्हें छोड़कर उन्होंने अपने बचपन के उस जंगली दबे हुए जुनून को फिर से जीने का फैसला किया। उन्होंने बैंक से 800 पाउंड नकद निकाले।
800 पाउंड?
हाँ, कैश। और स्कॉटलैंड गई एक सुनसान सी जगह पर और एक ब्रीडर से 10 हफ्ते की एक गौशौक खरीदी। उसका नाम रखा मेबल।
इसके बाद तो उन्होंने शायद खुद को सबसे काट लिया होगा।
हाँ, लगभग पूरी तरह से। वो अपने घर में बंद हो गई। घर अब मेबल का अड्डा बन गया था। उनकी जिंदगी अब यूनिवर्सिटी के कैलेंडर या दोस्तों से मिलने जुलने से नहीं चलती थी,
बल्कि मेबल से चलती थी।
बिल्कुल। मेबल को कब खिलाना है, उसका वजन ठीक रखना है और सबसे मुश्किल काम, मैनिंग। मतलब बाज को इंसान के साथ रहने की आदत डालना, उसका डर निकालना, ये बहुत धैर्य और वक्त लेने वाला काम है। उन्होंने दोस्तों से कटना शुरू कर दिया, अपनी अकादमिक जिम्मेदारियां पीछे छूट गईं।
ऐसा लगता है जैसे वो अपनी इंसानियत ही छोड़ देना चाहती थी। क्या वो सच में बाज बनना चाहती थी?
कुछ हद तक हाँ। एक तरह से उन्हें लगने लगा था कि इंसान होने में बहुत दुख है, यादें हैं, अफसोस है, चिंता है। बाज इन सबसे ऊपर होता है। वो सिर्फ अभी में जीतता है, अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से। क्रूर होता है पर उसमें भावनाएं नहीं होती। हेलेन को लगा कि शायद अगर वो मेबल की तरह बन जाए, शिकारी बन जाए, तो ये जो असहनीय दुख है इससे बच जाएंगे।
लेकिन ये रास्ता तो और भी कठिन रहा होगा।
बहुत। उन्हें एक शिकारी की तरह सोचना सीखना पड़ा, दुनिया को शिकार और शिकारी के नजरों से देखना। मेबल के साथ उनका जो बॉन्ड बना वो प्यार दुलार वाला नहीं था, वो शिकार के एक साझा मकसद पर टिका था।
और जब मेबल ने अपना पहला शिकार किया, वो कैसा अनुभव था उनके लिए?
वो एक बहुत ही पावरफुल और अजीब सा पल था। जब मेबल ने उड़कर एक तीतर का शिकार किया तो हेलेन को एक अजीब सी आदिम जीत महसूस हुई। वो रोमांचक भी था और डरावना भी। कुछ देर के लिए उन्हें लगा कि हाँ, ये बाज की दुनिया, ये हिंसक दुनिया, इसने उनके दुख को ढक लिया है। वो लिखती भी हैं कि मैं एक अलग दुनिया में जी रही थी, एक अंधेरी दुनिया, खून और हड्डियों की दुनिया।
लेकिन ये जो जंगलीपन में डूबना था, ये हमेशा तो नहीं चल सकता था। इंसान आखिर इंसान है।
बिल्कुल। कई महीने ऐसे जीने के बाद उन्हें इसकी कीमत समझ आने लगी। एक दिन उन्होंने एक गंदी सी खिड़की में अपना अक्स देखा।
ओह।
और उन्हें क्या देखा? एक पतली पागल आंखों वाली बाज जैसी औरत। वो खुद को पहचान नहीं पाई और वो देखकर वो दहल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि वो मेबल को नहीं साध रही थी,
बल्कि मेबल उन्हें साध रही थी।
हाँ, मेबल का जंगलीपन उन्हें साध रहा था, उनकी इंसानियत को खत्म कर रहा था।
तो ये वो पॉइंट था जहां उन्हें समझ आया कि बाज बनना हल नहीं है। यहीं पर डीएच वाइट की कहानी उनके लिए फिर से जरूरी हो गई होगी।
बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट था। उनका वो जो एकेडमिक दिमाग था वो फिर से जागा। उन्होंने टीएच वाइट पर अपना रिसर्च फिर से उठाया और इस बार ज्यादा गहराई से पढ़ा। वाइट ने अपनी किताब द गौशौक में लिखा था कि कैसे उन्होंने बाज को साधने की कोशिश की और वो कितनी बुरी तरह फेल हुए, कितने हिंसक हो गए थे।
हाँ।
हेलेन ने वाइट की कहानी में देखा कि अगर वो इसी रास्ते पर चलती रहीं तो उनका अंत क्या हो सकता है। उन्हें समझ आया कि वाइट जो अपने बाज पर क्रूरता कर रहा था, वो असल में उसकी अपनी अंदर की पीड़ा थी, उसकी आत्मघृणा थी।
अच्छा।
वाइट की कहानी ने हेलेन को दिखाया कि जंगलीपन के साथ रिश्ता अगर अपनी कड़वाहट का आईना बन जाए तो कितना विनाशकारी हो सकता है, और इसने उन्हें एक अलग रास्ता चुनने में मदद की, आत्मविनाश का नहीं बल्कि एकीकरण का, खुद को वापस पाने का।
तो वाइट की नाकामी ने उन्हें एक तरह से चेतावनी दी। तो किताब का अंत कैसा है? क्या वो मेबल को छोड़ देती हैं या अपने पुरानी प्रोफेसर वाली जिंदगी में लौट जाती हैं?
नहीं, अंत इतना सीधा नहीं है। किताब का जो आखिरी हिस्सा है वो इंसानी दुनिया में धीरे धीरे दर्द के साथ लेकिन उम्मीद के साथ वापस लौटने के बारे में है। ये मेबल को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बाज पालक और एक इंसान दोनों एक साथ कैसे रहा जाए, इसका रास्ता खोजने के बारे में है। वो धीरे धीरे दोस्तों से, परिवार से फिर मिलती हैं। वो अपने दुख को स्वीकार करना सीखती हैं पर उसे अपनी पूरी पहचान नहीं बनने देती।
तो एक तरह का इंटीग्रेशन है।
बिल्कुल। अंत कोई जादुई इलाज नहीं दिखाता, वो एक मुश्किल लड़ाई से हासिल किया गया संतुलन है। बाज ने उन्हें शिकारी बनाकर नहीं बचाया, बल्कि उन्हें अपनी इंसानियत की गहराइयों, उसके अंधेरे और उजाले दोनों पहलुओं का सामना करने पर मजबूर किया और फिर उन्हें उसमें वापस लौटने का विकल्प दिया। और इसी अनोखे गहरे अनुभव से एच इज़ फॉर हॉक जैसी किताब निकली, जिसने नेचर राइटिंग को एक नई पहचान दी।
ये तो सच में अद्भुत है। तो इस किताब के जरिए हेलेन मैकडोनाल्ड प्रकृति को कैसे देखती हैं? क्या वो रोमांटिक नजरिया है जैसा हम अक्सर कविताओं में पढ़ते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलेन प्रकृति को किसी भी तरह से रोमांटिक नहीं बनाती, वो उसे सुंदर और शांत मानने वाले नजरिए को खारिज करती हैं। उनके लिए प्रकृति, जिसका प्रतीक गौशौक है, वो क्रूर है, उसमें कोई नैतिकता नहीं है, वो इंसानी भावनाओं, हमारी चिंताओं से एकदम उदासीन है। और वो प्रकृति के इस अन्यपन का, इस परायपन का बहुत सम्मान करती हैं। वो मेबल को कोई सिंबल या पालतू जानवर नहीं मानती, वो उसे एक अलग जीव मानती हैं, जिसकी अपनी चेतना है, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी जिंदगी है।
लेकिन शुरुआत में तो वो मेबल पर कंट्रोल चाहती थी, शायद अपने दुख पर कंट्रोल पाने के लिए। ये नजरिया कैसे बदला?
हाँ, शुरुआत में यही विचार था कि अगर वो इस जंगली जीव को वश में कर लेंगी तो शायद अपने अंदर जो तूफान मचा उसे भी काबू कर लेंगी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये कंट्रोल एक भ्रम है।
अच्छा,
जंगलीपन के साथ रिश्ता आप हुकूमत चलाकर नहीं बना सकते। ये रिश्ता बातचीत का है, एक दूसरे का सम्मान करने का है, और एक तरह की गहरी, बिना शब्दों वाली समझ का है। उनका जो फाइनल नजरिया बनता है वो इंटीग्रेशन का है। वो मानती हैं कि जंगली और सभ्य, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये दोनों हमारे अंदर भी हैं और हमारे आसपास की दुनिया में भी हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
यानी अपने अंदर के बाज को भी स्वीकारना जरूरी है।
हाँ, बिल्कुल। हमारी जो सहज प्रवृत्तियां हैं, हमारा गुस्सा है, दुख सहने की हमारी क्षमता है, इन सबको स्वीकार करना ही हमें पूरी तरह से इंसान बनाता है।
और इस पूरे सफर के पीछे उनकी असल प्रेरणा क्या थी? क्या सिर्फ दुख से बचना था या कुछ और भी था इसके पीछे? ये समझना भी दिलचस्प है।
देखिए, दुख का जो असहनीय दर्द था, उससे बचने की छटपटाहट, वो तो सबसे बड़ी वजह थी ही। पिता की मौत ने जैसे उनकी दुनिया ही खाली कर दी थी, लेकिन इसके पीछे कई और परतें भी थीं।
जैसे?
एक तो था पलायन।
Skip.
दुख की आवाज इतनी तेज थी कि उससे बचने के लिए खुद को किसी बहुत ही मुश्किल, ध्यान बटाने वाले काम में झोंक देना। दूसरा था परिवर्तन।
हाँ।
मतलब एक टूटे हुए, दुखी इंसान से बदलकर कुछ और बन जाने की इच्छा, शायद एक शक्तिशाली, भावनाहीन शिकारी। तीसरा था पिता से जुड़ाव। बाज पालन एक ऐसा शौक था जो उन्होंने अपने पिता के साथ शेयर किया था, तो मेबल को पालकर वो शायद उस रिश्ते को, उस याद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। और चौथा, अर्थ की तलाश। जब जिंदगी का सारा ढांचा बिखर जाए तो बाज पालन के जो पुराने सख्त नियम हैं, उनमें एक तरह का अनुशासन, एक मकसद खोजना।
तो ये सिर्फ भागना नहीं था?
नहीं, ये उस दुख के बीच जीने का एक नया तरीका खोजने की कोशिश थी। बहुत जटिल प्रेरणाएं थी।
वाकई बहुत गहरी बातें हैं ये। हेलेन की इस पूरी यात्रा में कई मोड़ आए। अगर हमें तीन सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हों जिन्होंने उनकी जिंदगी और इस कहानी का रुख बदल दिया, तो वो कौन से होंगे?
ये चुनना तो मुश्किल है, क्योंकि पूरी यात्रा ही बदलावों से भरी है। लेकिन मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी मोड़ तो उनके पिता की अचानक मृत्यु थी।
हाँ, वो तो है ही।
ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, इसने हेलेन के वजूद को, उनकी पहचान को हिला दिया। उनके पिता उनके लिए जैसे एक लंगर थे। उनके जाने से जो खालीपन आया, उसी खालीपन को भरने के लिए वो गौशौक के उस विशाल, डरावने जंगलीपन की तरफ मुड़ी। इस एक घटना ने उन्हें एक स्थिर, काम में लगी अकेडमिक से एक बिखरी हुई, लगभग हताश आत्मा में बदल दिया।
बिल्कुल, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। और दूसरा अहम मोड़?
दूसरा मेरे हिसाब से था मेबल को खरीदने का वो पल और उसे घर लाना। स्कॉटलैंड जाना, कैश पैसे देना, एक अजनबी से तूफानी मौसम में एक बाज खरीदना, ये कोई सोचा समझा प्लान नहीं था। ये एक आवेग था, एक अंदरूनी पुकार थी।
हाँ, आपने बताया था।
ये जैसे उन्होंने जानबूझकर तर्क की दुनिया, इंसानी रिश्तों की दुनिया को छोड़कर एक पुरानी, आदिम, जंगली दुनिया में कदम रखा। ये वो पल था जब उनका दुख से निपटने का जो एक अमूर्त सा विचार था, वो एक जीती जागती, पंखों वाली, खतरनाक हकीकत बन गया, जो उनकी कार में उनके साथ घर आ रहा था। ये जैसे पीछे मुड़ने के सारे पुल जला देना था।
और तीसरा मोड़, जिसने शायद वापसी का रास्ता दिखाया।
हाँ, बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, वो था अपनी ही परछाई से सामना। जब वो पूरी तरह दुनिया से कटी हुई थी, घर में अव्यवस्था फैली थी, वो पूरी तरह मेबल की दुनिया में खोई थी, तब उन्होंने एक गंदी खिड़की में अपना अक्स देखा।
एक पतली, पागल आंखों वाली, बाज जैसी औरत।
हाँ, वो खुद को उस हाल में देखकर हिल गई। उस एक पल ने उनका वो भ्रम तोड़ दिया कि वो बाज बनकर ठीक हो रही हैं। उन्हें साफ दिखा कि वो बाज को नहीं बल्कि बाज का जंगली पन उन्हें काबू कर रहा था, उनकी इंसानियत छीन रहा था।
ये तो बहुत बड़ा शौक रहा होगा।
बहुत बड़ा। और यही वो मोड़ था जहां से असल उपचार की शुरुआत हुई। उन्हें समझ आया कि बाज बनने की कोशिश इलाज नहीं बल्कि एक और तरह की मौत है, और उन्हें वापस इंसान बनने का रास्ता खोजना होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
हेलन मैकडोनल्ड की ये जो असाधारण कहानी है, ये हमें एक इंसान के तौर पर क्या सिखाती है? आज के समय में हम इससे क्या सबक ले सकते हैं?
सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक तो यही है कि शोक यानी दुख एक जंगली चीज है, अप्रत्याशित है, बहुत पर्सनल है। ये कोई सीधी लाइन में नहीं चलता कि पहले ये स्टेज आएगा फिर वो।
हाँ, अक्सर ऐसा सोचा जाता है।
हेलन की कहानी हमें बताती है कि दुख की सच्चाई अक्सर बहुत बिखरी हुई, कन्फ्यूजिंग होती है, और शोक मनाने का कोई एक सही या गलत तरीका नहीं होता। ये हमें अपने और दूसरों के दुख के प्रति ज्यादा हमदर्दी रखना सिखाती है।
और ये भी कि कभी कभी जो हीलिंग होती है, जो सुकून मिलता है, वो उन जगहों से आ सकता है जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो। बिल्कुल।
सच्ची शांति या आराम हमेशा जो जाने पहचाने तरीके हैं, जैसे थेरेपी है या दोस्तों का साथ है, उन्हीं से मिले, ये जरूरी नहीं। हेलन के लिए वो सुकून एक शिकारी पक्षी के साथ एक बहुत ही मुश्किल डिमांडिंग रिश्ते से आया। तो सबक ये है कि हमें हीलिंग के जो गैर पारंपरिक रास्ते हैं उनके लिए भी खुला रहना चाहिए, और कभी कभी हमारे अपने जो गहरे शौक होते हैं, जो जुनून होते हैं, उनमें भी हमें वो सहारा और मतलब मिल सकता है जिसकी हमें जरूरत होती है।
प्रकृति के साथ उनका जो रिश्ता था वो भी बहुत कुछ सिखाता है। ये सिर्फ भागने की जगह नहीं थी बल्कि एक आईना भी बन गई उनके लिए, है ना?
हाँ, ये बहुत अहम बात है। हेलन प्रकृति में सिर्फ भागने नहीं गई। जानवरों, पक्षियों, मौसम के साथ गहराई से जुड़ना हमें हमारी परेशानियों से दूर नहीं ले जाता बल्कि उन पर एक नया, ज्यादा ताकतवर नजरिया दे सकता है। मेबल की दुनिया ने हेलन को जिंदगी और मौत की उन कच्ची सच्चाइयों का सामना करवाया जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर भूल जाते हैं। और इससे उन्हें अपने दुख को एक बड़े प्राकृतिक चक्र के हिस्से की तरह देखने में मदद मिली।
और शायद सबसे गहरा सबक यह है कि अपनी मुश्किल भावनाओं को दबाने या उनसे भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ज्यादा ताकतवर है।
निश्चित रूप से दर्द से भागने की कोशिश या उसे नकारने की कोशिश ज्यादातर नाकाम रहती है और हमें और उलझा देती है। हेलन की कहानी दिखाती है कि संपूर्णता का, हीलिंग का रास्ता अपने व्यक्तित्व के सारे हिस्सों को अपनाने में है। उजाले को भी, अंधेरे को भी, सभ्य पहलू को भी, जंगली पहलू को भी, खुशी को भी, दुख को भी, इन सबको एक साथ लेकर चलना, ये इंसान के लचीलेपन का, रेजिलियंस का एक जबरदस्त उदाहरण है। ये दिखाती है कि बहुत बड़े नुकसान और बिखराव के बाद भी जिंदगी में वापस लौटना मुमकिन है, शायद पहले से ज्यादा जटिल, ज्यादा समझदार और ज्यादा मजबूत बनकर।
तो इस बहुत ही गहरी और कई परतों वाली कहानी पर हमारी बातचीत के आखिर में अगर हमें तीन मुख्य बातें निकालनी हों जो हमारे सुनने वालों के साथ रह जाएं, तो वो क्या होंगी?
ठीक है, पहली मैं कहूंगा एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। सबसे गहरा इमोशनल लेसन ये है कि शोक एक जंगली ताकत है, और इससे निपटने के लिए कभी कभी अपरंपरागत, यहां तक कि आदिम लगने वाले तरीकों को अपनाना, जैसे मेबल के साथ हेलन का वो तीव्र रिश्ता, दर्द को दबाने या समाज के बनाए नियमों पर चलने से ज्यादा मददगार हो सकता है। अपने दुख की सच्चाई का सामना करना जरूरी है, चाहे वो कितना भी असहज क्यों ना लगे।
दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। टीएच व्हाइट की कहानी और उनके अपने बाज के साथ बिगड़े रिश्ते को समझना हेलन के लिए अपनी यात्रा को समझने का एक जरूरी बौद्धिक ढांचा बना। इसने उन्हें अपने दुख को व्हाइट के आत्मविनाश से अलग करने में मदद की, और उन्होंने जानबूझकर विनाश के बजाय एकीकरण का रास्ता चुना। ये दिखाता है कि दूसरों की कहानियां, इतिहास, साहित्य, ये सब हमें खुद को और अपने विकल्पों को बेहतर समझने में मदद करते हैं।
और तीसरी एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। सच्ची हीलिंग का मतलब दर्द को मिटा देना या वापस पहले जैसा हो जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उस अनुभव को जिसमें वो जंगलीपन भी शामिल है जो दुख में जागता है, अपनी पहचान में शामिल कर लेना, उसे एकीकृत करना। ये अपने अंदर के जंगल और अपने इंसानी रिश्तों के बीच एक नया संतुलन खोजना है। ये खुद की एक नई, ज्यादा जटिल और शायद ज्यादा दयालु समझ बनाने की यात्रा है। हीलिंग मतलब संपूर्णता नहीं बल्कि एकीकरण है।
हेलन मैकडोनल्ड ने अपने शोक को समझने के लिए जंगलीपन का सामना किया। सोचने वाली बात यह है, हमारे अपने जीवन में मुश्किल भावनाओं से जूझने के लिए हम किन अनपेक्षित या जंगली रास्तों को अपना सकते हैं, या शायद किन से हम अनजाने में बचते रहते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।